एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और इस ज्ञान गोष्ठी में आप सबका बहुत स्वागत है।
नमस्ते।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया।
हाँ बिल्कुल।
जेरेड डायमंड की पुलित्जर पुरस्कार विजेता किताब गन्स जर्म्स एंड स्टील द फेट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, हिंदी में कहें तो बंदूक कीटाणु और इस्पात।
बिल्कुल। और ये किताब एक बहुत ही मतलब सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल उठाती है ना कि आखिर ये दुनिया में दौलत और ताकत का बंटवारा ऐसा क्यों है जैसा आज हमें दिखता है।
सही।
क्यों यूरोप और एशिया के लोगों ने ही बाकी दुनिया पर कब्जा किया, उल्टा क्यों नहीं हुआ?
हाँ, ये सवाल तो आज भी उतना ही जरूरी है।
यकीनन।
और ये किताब हमें आज की जो वैश्विक असमानता है उसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ों को समझने में मदद करती है।
हाँ।
और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ये उन पुराने नस्लवादी या फिर वो जो सांस्कृतिक पूर्वाग्रह वाले जवाब थे ना,
हाँ, कि कुछ लोग बेहतर होते हैं,
बिल्कुल, उनको ये सिरे से खारिज करती है।
हाँ, और इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। डायमंड ये नहीं कहते कि भाई कोई दिमागी तौर पर ज्यादा काबिल था या नस्ली तौर पर,
नहीं नहीं,
वो कहते हैं कि ये तो सीधा सीधा भूगोल और पर्यावरण का खेल था।
बिल्कुल।
मतलब कहाँ कौन से पौधे उग सकते थे, कौन से जानवर पाले जा सकते थे, महाद्वीपों की बनावट कैसी थी, इन सब चीजों ने मिलकर एक तरह से इतिहास का रुख तय कर दिया।
तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बंदूक कीटाणु और इस्पात ने दुनिया की किस्मत तय की।
हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले मुझे लगता है लेखक के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। जेरेड डायमंड वो कोई पारंपरिक इतिहासकार नहीं है।
सही कहा, वो तो UCLA में भूगोल और शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं।
अच्छा।
उनका काम मुख्य रूप से इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और बायोजोग्राफी पर रहा है, मतलब पृथ्वी पर अलग अलग प्रजातियां कैसे फैली, कैसे विकसित हुई, इस सब पर।
और शायद यही वैज्ञानिक बैकग्राउंड उन्हें मानव इतिहास को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने की ताकत देता है ना?
एकदम। वो राजाओं युद्धों से हटकर पर्यावरण और जीव विज्ञान के चश्मे से इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कई साल न्यूगिनी में भी बिताए हैं, वहाँ के पक्षियों पर स्टडी करते हुए और वहाँ के लोगों के साथ रहते हुए।
हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में, और वहीं उनकी मुलाकात याली नाम के एक स्थानीय नेता से हुई थी।
हाँ, याली।
और याली ने उनसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछा था जिसने डायमंड को एकदम सोचने पे मजबूर कर दिया।
क्या सवाल था?
उन्होंने पूछा, तुम गोरे लोग इतना सारा सामान, वो उसे कार्गो कहते थे, लेकर यहाँ क्यों आयो, और हम लोगों के पास अपना कार्गो क्यों नहीं है?
ओह, कितना मौलिक सवाल है।
इस सवाल का एक बहुत लंबा गहरा वैज्ञानिक जवाब है।
कमाल है। और ये भी है कि वो कितने सारे अलग अलग फील्ड्स, बायोलॉजी, भूगोल, इतिहास, लिंग्विस्टिक्स, आर्कियोलॉजी, इन सब की जानकारी को एक साथ लाते हैं।
हाँ, और इसी से वो एक बड़ी तस्वीर बना पाते हैं। इसी वजह से ये किताब इतनी प्रभावशाली बन गई।
बिल्कुल।
तो अब आते हैं किताब के मूल विचार पर। बंदूक कीटाणु और इस्पात क्या है? ये पिछले करीब 13,000 सालों के मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा कैनवास पेश करती है। इसका मकसद है ये समझाना कि क्यों अलग अलग महाद्वीपों पर इंसानी समाज अलग अलग रफ्तार से बढ़े और क्यों उनके बीच इतनी ज्यादा असमानता पैदा हो गई।
हाँ, और जैसा हमने पहले कहा, किताब का एक मुख्य मकसद उन नस्लवादी विचारों को गलत साबित करना भी है जो मानते थे कि इतिहास के विजेता ज्यादा होशियार या बेहतर थे।
राइट। डायमंड बार बार दिखाते हैं कि भाई ये लोग बस पर्यावरण की लॉटरी जीत गए थे, उन्हें ऐसा माहौल मिला जिसने उन्हें दूसरों पर बढ़त दे दी। ये किताब थोड़ी जासूसी कहानी जैसी भी लगती है। ये हमें उस जमाने में ले जाती है, करीब 11,000 ईसा पूर्व, जब दुनिया भर में इंसान छोटे छोटे शिकारी संग्राहक समूहों में रहते थे।
हाँ, सब लगभग बराबर थे उस समय।
बिल्कुल। फिर डायमंड परत दर परत खोलते हैं कि कैसे यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के समाज अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के समाजों से इतने आगे निकल गए।
किताब यह समझाती है कि देखो, जीत के जो तात्कालिक कारण थे वो तो ठीक है, बंदूकें थीं, बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु थे, स्टील के हथियार थे।
हाँ।
लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये चीजें कुछ ही समाजों के पास क्यों आई, और यही डायमंड हमें असली मतलब बुनियादी कारणों तक ले जाते हैं।
और वो कारण जुड़े हैं खेती और पशुपालन से।
बिल्कुल, खाद्य उत्पादन से।
चलिए अब उन मुख्य तर्कों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ा। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी कड़ी, खेती। फूड प्रोडक्शन.
हाँ, डायमंड कहते हैं कि शिकार छोड़कर खेती अपनाना मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था.
क्यों, ऐसा क्यों मानते हैं वो?
क्योंकि इससे पहली बार जरूरत से ज्यादा अनाज मतलब फूड सरप्लस पैदा होने लगा.
अच्छा, खाने की चिंता कम हुई.
हाँ, और जब खाने की चिंता कम हुई तो समाज में स्थायी बस्तियां बसने लगी, आबादी भी बढ़ने लगी. और इसी खाने के सरप्लस ने कुछ लोगों को खेती के अलावा दूसरे काम करने का मौका दिया.
जैसे?
जैसे राजा, सैनिक, पुजारी, कारीगर और आविष्कारक भी.
ओके, तो यहीं से जटिल समाजों, राज्यों और नई टेक्नोलॉजी का रास्ता खुला.
बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि खेती हर जगह क्यों नहीं शुरू हुई एक साथ?
हाँ, ये बड़ा सवाल है, और यहीं पर वो भौगोलिक भाग्य या ज्योग्राफिक लक वाली बात आती है.
हाँ.
डायमंड बताते हैं कि खेती कोई एक दिन में हुआ आविष्कार नहीं था, ये धीरे धीरे विकसित हुई और दुनिया भर में ऐसे जंगली पौधे और जानवर जिन्हें पालतू बनाया जा सकता था उनका बंटवारा बहुत ही असमान था.
मिसाल के तौर पर पश्चिमी एशिया का वो फर्टाइल क्रीसेंट यानी उपजाऊ अर्धचंद्र वाला इलाका.
हाँ, सुना है उसके बारे में.
वो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत था.
कैसे?
वहाँ गेहूं, जौ, मटर, दालें ऐसे कई पौष्टिक और आसानी से उगने वाले पौधे वाइल्ड रूप में मौजूद थे.
अच्छा.
और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी, वहाँ भेड़, बकरी, सुअर, गाय और घोड़े जैसे बड़े जानवर थे जिन्हें पालतू बनाया जा सकता था.
हाँ, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज रहा होगा.
सोचिए ना, ये जानवर सिर्फ दूध, मांस, ऊन ही नहीं देते थे बल्कि खेती में हल चलाने और परिवहन में भी काम आते थे.
सही बात है, बिना जानवरों के हल चलाना या भारी सामान ढोना कितना मुश्किल होता होगा.
और यही डेमन वो अन्ना करेनिना सिद्धांत का जिक्र करते हैं. टॉलस्टॉय के उपन्यास से लिया गया है ये.
अच्छा, वो क्या है?
जैसे उपन्यास में कहते हैं कि सभी खुशहाल परिवार एक जैसे होते हैं पर हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है.
हाँ,
वैसे ही किसी जंगली जानवर को पालतू बनाने के लिए कई सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए.
जैसे?
आदत हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी शर्तें हैं.
ओह, मतलब काफी कुछ सही होना चाहिए.
बिल्कुल, इनमें से एक भी शर्त अगर पूरी ना हो तो उस जानवर को पालतू बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है.
अच्छा, इसीलिए?
हाँ, इसीलिए दुनिया के जो 14 मुख्य पालतू स्तनधारी हैं उनमें से 13 यूरेशिया में ही मिले.
13, सिर्फ एक बाहर?
हाँ, अमेरिका में सिर्फ लामा था, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं.
तो ये लोगों की होशियारी या कमी का सवाल नहीं था?
बिल्कुल नहीं, ये बस किस्मत का खेल था कि उन्हें सही कच्चा माल, सही जानवर मिले या नहीं पालतू बनाने के लिए.
ये तो कमाल की बात है. अच्छा, अगला अहम पहलू है महाद्वीपों की बनावट, उनका अक्ष या एक्सिस.
हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है. यूरेशिया का जो फैलाव है वो मुख्य रूप से पूरा पश्चिम दिशा में
है ना?
हाँ, नक्शे पर देखें तो लगता है. इसका मतलब ये हुआ कि एक ही तरह की जलवायु वाले इलाके काफी दूर तक फैले हुए थे.
तो इससे क्या फर्क पड़ा?
इससे फसलों, जानवरों और यहाँ तक कि तकनीकों और विचारों का फैलना बहुत आसान हो गया. जो फसल मध्य पूर्व में उगती थी वो आसानी से यूरोप या चीन तक पहुँच सकती थी क्योंकि क्लाइमेट लगभग एक जैसा था.
समझी. और अमेरिका और अफ्रीका?
उनका फैलाव है उत्तर दक्षिण दिशा में.
हाँ, वो लंबे ज्यादा हैं.
तो वहाँ क्या होता है, जलवायु में बहुत तेजी से बदलाव आता है. आप थोड़ा उत्तर या दक्षिण जाइए, मौसम बदल जाता है.
तो जो फसल मेक्सिको में उग सकती थी वो शायद एंडीज या उत्तरी अमेरिका में नहीं उग पाती.
बिल्कुल, बहुत मुश्किल था. इसी तरह जानवरों और तकनीकों का फैलाव भी बहुत धीमा और मुश्किल रहा. ये छोटी सी बात लगती है पर इसका असर हजारों सालों तक रहा.
वाकई सोचने वाली बात है.
अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे चौंकाने वाला है, कीटाणु, जर्म्स.
हाँ, इसे डायमंड कहते हैं पशुधन का घातक उपहार, लीथल गिफ्ट ऑफ लाइफ स्टॉक.
घातक उपहार, ये क्या मतलब हुआ? हुआ ये कि यूरेशिया में इंसान और पालतू जानवर हजारों सालों से बहुत करीब रह रहे थे.
हाँ, गाय, भेड़, बकरी, घोड़े.
बिल्कुल, घनी आबादी और जानवरों के साथ रहने से कई नए रोगाणु पैदा हुए जो जानवरों से इंसानों में आ गए.
ओह, जैसे आज भी होता है कभी कभी.
हाँ, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा जैसी कई घातक बीमारियां इसी तरह जानवरों से इंसानों में आई.
बापरे.
अब सदियों तक इन बीमारियों से जूझते जूझते यूरेशियाई लोगों में इनके खिलाफ कुछ हद तक प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी विकसित हो गई.
अच्छा, उनकी बॉडी अडेप्ट कर गई थोड़ी.
हाँ, लेकिन जब ये लोग अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में गए जहाँ लोगों का इन बीमारियों से पहले कभी पाला ही नहीं पड़ा था,
तो क्या हुआ?
तो ये कीटाणु अनजाने में ही जैविक हथियार बन गए.
क्या मतलब?
इन नई दुनियाओं में इन बीमारियों ने तबाही मचा दी. कई जगहों पर तो 90-95% तक मूल आबादी सिर्फ इन बीमारियों से ही खत्म हो गई।
95% सिर्फ बीमारियों से?
हाँ, इसने यूरोपीय लोगों की जीत को बहुत बहुत आसान बना दिया। जैसे पिज़ारो ने इनका साम्राज्य पर जीत हासिल की, उसमें घोड़ों और तलवारों से ज्यादा शायद चेचक का हाथ था।
चेचक का?
हाँ, कहते हैं कि चेचक पिज़ारो के पहुंचने से पहले ही वहां फैल चुकी थी और उसने इंका समाज को बहुत कमजोर कर दिया था।
ये तो बहुत ही डरावना है सोचना,
है ना? और आखिर में आते हैं बंदूकें और इस्पात, यानी टेक्नोलॉजी।
हाँ, जिनके नाम पर किताब है।
ये कहां से आई? डायमंड का तर्क है कि ये भी उसी फूड सरप्लस और घनी आबादी का नतीजा थी।
अच्छा, कैसे?
जब समाज में विशेषज्ञ वर्ग पैदा हुआ, कारीगर, आविष्कारक, तो उन्होंने नई चीजें बनाने पर ध्यान दिया। धातु का काम, हथियार बनाना, जहाज बनाना, ये सब तभी मुमकिन हुआ जब समाज के पास इतने रिसोर्स और लोग थे कि वो इन चीजों पर फोकस कर सकें।
और लिखने की कला, उसका क्या?
लेखन कला का विकास भी जटिल समाजों में ही हुआ। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब रखना था, जानकारी सहेजनी थी।
जरूरत ने आविष्कार करवाया।
बिल्कुल। तो कुल मिलाके डायमंड की कहानी ये है कि पर्यावरण और भूगोल ने कुछ समाजों को खेती और पशुपालन का फायदा दिया।
ठीक है।
इससे घनी आबादी हुई, विशेषज्ञता आई, बीमारियां फैली और उनसे लड़ने की क्षमता भी आई और जटिल तकलीफें विकसित हुईं।
और यही वो बंदूकें, कीटाणु और इस्पात थे।
हाँ, जिन्होंने उन्हें बाकी दुनिया पर हावी होने में मदद की। ये लोगों की काबिलियत का नहीं बल्कि उनके शुरुआती माहौल का नतीजा था।
वाह, मतलब पूरी तस्वीर ही बदल जाती है ऐसे सोचने पर।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ बहुत जरूरी संदेश या थीम्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा तो यही है, भौगोलिक भाग्य यानी ज्योग्राफिक लक का जबरदस्त असर।
हाँ, ये तो है। कहाँ पैदा होना है ये तय करता है कि आपके समाज को शुरुआत में कौन से पत्ते मिलेंगे खेलने के लिए। यूरेशिया को बस किस्मत से बेहतर पत्ते मिल गए।
दूसरा, जो आपने पहले भी कहा, ये किताब नस्लवादी सोच को पूरी तरह नकारती है। ये बार बार जोर देकर कहती है कि कोई भी इंसानी समूह दिमागी तौर पर दूसरों से कम या ज्यादा नहीं है।
बिल्कुल। जो फर्क हमें इतिहास में दिखता है वो अवसरों का है, काबिलियत का नहीं। और ये बात आज भी उतनी ही जरूरी है जब हम दुनिया में अलग अलग समूहों के बीच फर्क देखते हैं।
तीसरा अहम संदेश है खाद्य उत्पादन, मतलब खेती और पशुपालन की केंद्रीय भूमिका। इसी ने जटिल समाजों की नींव रखी।
हाँ, जहाँ ये मुमकिन हुआ वहीं शहर बसे, तकनीकें विकसित हुईं, साम्राज्य बने। जहाँ ये मुमकिन नहीं था वहाँ समाज छोटे और सरल बने रहे। हमारी आज की पूरी मॉडर्न सभ्यता उसी शुरुआती खेती पर टिकी है एक तरह से।
और चौथा, वो कीटाणुओं की अनदेखी लेकिन विनाशकारी भूमिका। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है कि इतिहास की बड़ी बड़ी जीतों में बीमारियों का इतना बड़ा हाथ रहा होगा।
हाँ, यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ इंसानों की लड़ाई नहीं है बल्कि इसमें प्रकृति की ताकतें भी बहुत बड़ा रोल निभाती हैं।
इस किताब में कुछ विचार वाकई ऐसे हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, जैसे वो याली का सीधा सा सवाल।
हाँ, आपके पास इतना सामान क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं? ये उस बुनियादी जिज्ञासा को दिखाता है जो हमें इतिहास समझने के लिए प्रेरित करती है।
या फिर डायमंड का जो मूल तर्क है, जिसे हम कह सकते हैं, इतिहास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ते पर चला, इसका कारण लोगों के माहौल का अंतर था, न कि लोगों के बीच जैविक अंतर।
हाँ, ये लाइन सीधे सीधे किसी भी तरह की नस्लीय श्रेष्ठता की धारणा पर चोट करती है।
और वो अन्ना केरेनिना सिद्धांत वाला आइडिया भी बहुत यादगार है।
हाँ, कि सफलता के लिए बहुत सारी चीजों का सही होना जरूरी है जबकि फेल होने के लिए एक भी कमी काफी है। यह हमें सिखाता है कि जानवरों को पालतू बनाना कितना मुश्किल और कितना किस्मत का खेल था।
और हाँ, पशुधन का खाता को भार वाला विचार कि जिन जानवरों ने हमें पाला पोसा, हमें आगे बढ़ाया, उन्हीं से मिली बीमारियों ने हमें अनजाने में दुनिया जीतने में मदद की।
इतिहास की एक विडंबना ही है ये।
तो इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम इन्हें अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया को देखने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहले तो यह हमें दुनिया में आज जो गरीबी, अमीरी और देशों के बीच जो फर्क दिखता है उसे समझने का एक ज्यादा गहरा और गैर नस्लवादी नजरिया देता है।
हाँ, मतलब किसी को सीधे दोष देने के बजाय।
बिल्कुल। किसी देश या समाज की हालत के लिए सीधे सीधे वहाँ के लोगों या संस्कृति को दोष देने के बजाय हम उसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्यों वो जहाँ है वहाँ है।
सही बात है। और जो लोग तथाकथित विकसित देशों में रहते हैं उनके लिए ये किताब एक तरह की विनम्रता भी सिखाती है ना?
बिल्कुल, ये बताती है कि भाई आपकी तरक्की सिर्फ आपकी मेहनत या होशियारी का नतीजा नहीं है बल्कि काफी हद तक एक अच्छी भौगोलिक शुरुआत का भी नतीजा है।
इससे शायद उन समाजों के प्रति सहानुभूति भी बढ़ती है जिन्हें शुरुआत में अच्छी परिस्थितियां नहीं मिली।
जरूर, साथ ही ये किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारी सभ्यता कितनी नाजुक है और किस तरह अपनी पर्यावरणीय नींव पर टिकी हुई है।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है।
सोचिए, हमारी पूरी दुनिया कुछ गिने चुने पौधों और जानवरों पर ही तो निर्भर है।
सही कहा।
ये हमें आज के जो पर्यावरण संकट हैं जैसे क्लाइमेट चेंज या बायोडाइवर्सिटी का नुकसान, उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करता है। कहीं हम अनजाने में अपनी नींव को ही तो कमजोर नहीं कर रहे।
ये हमें सिस्टम में सोचना भी सिखाती है, कैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा असर डाल सकती हैं, कैसे कारण और प्रभाव की लंबी कड़ियां होती हैं।
हाँ, ये सोच तो कहीं भी काम आ सकती है, बिजनेस में, पॉलिसी बनाने में, यहाँ तक कि अपनी पर्सनल लाइफ के फैसलों में भी।
तो इस पूरी गहरी बातचीत के आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं, आपके लिए सबसे खास बात या सबसे चौंकाने वाली सीख क्या रही इस किताब से?
मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात भौगोलिक भाग्य की ताकत ही है। ये सोचना कि किसी समाज का भविष्य इस हद तक उसके पर्यावरण पर निर्भर कर सकता है, ये काफी गहरा प्रभाव डालता है।
हाँ।
और हाँ, वो अन्ना करेनिना सिद्धांत भी कि सफलता कितनी मुश्किल से मिलती है और कितनी सारी चीजों पर निर्भर करती है, ये भाग्य और बाधाओं के खेल को उजागर करता है।
और आपके लिए?
मेरे लिए सबसे यादगार पहलू शायद वो कीटाणुओं की भूमिका है, कैसे वो अनदेखे दुश्मन इतिहास का रुख बदल सकते हैं।
हाँ, वो तो वाकई दिमाग हिला देने वाला था।
और साथ ही ये किताब जो असमानता को समझने का एक गैर नस्लीय फ्रेमवर्क देती है वो बहुत शक्तिशाली है। ये याद दिलाता है कि दुनिया के सभी लोग मूल रूप से एक जैसे ही काबिल हैं, बस मौके और संसाधन अलग अलग मिले।
बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस तरह पर्यावरण ने हमारे अतीत को गढ़ा, क्या आज हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के दूसरे संकटों के जरिए अनजाने में अपने भविष्य के इतिहास को फिर से लिख रहे हैं? क्या हम अतीत की इन गहरी जड़ों को समझकर आज की असमानताओं को बेहतर तरीके से संबोधित कर सकते हैं? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।